इसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही प्यारा है, गुनाह और तौबा। रब देखते हैं इनका क्या है। जो शख्स हमेशा आफियत और सलामती का ख्वाहिश हो, कौन नहीं है ये बताइए। हम में से हर एक आफियत चाहता है। आफियत क्या होता है? सेफ्टी, बीमारियों से, चोरियों से, परेशानियों से, बर्फ़ पे फिसलने से, बीमार हो जाने से, हर चीज़ से आफियत, राइट। और सलामती भी चाहते हैं हम, नहीं चाहते कि हम सलामत ना रहें या हमारे जिस्म में कोई टूट फूट हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करें? अगर आप और मैं आफियत और सलामती चाहती हैं, तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों से खुद को हर वक्त बचाता रहे, इसलिए कि जो अपने नफ्स को तकवा के मनाफी उमूर में खुला छोड़ता है, जल्द या बदेर इसकी सज़ा ज़रूर पाता है। बस औकात इस धोखे में होता है कि गुनाह पर बर वक्त सज़ा नहीं मिली, अल्लाह ताला के एहसानात बराबर जारी हैं, तो समझता है कि मेरे गुनाहों से दरगुजर कर दिया गया, और वह मैं यामल सुअ युजज़ भी ही के फरमाने इलाही को भूल जाता है। इसका मतलब क्या है? और जो कोई बुरा अमल करेगा तो उसकी जजा पाएगा। और कभी नफ्स ये कहता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करेगा, और गुनाह करवा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ करता है, लेकिन जिसे चाहता है इसे माफ़ करता है। मग़फ़रत का मतलब बयान करूँगा, इसको समझो कि मग़फ़रत और तौबा किसे कहते हैं? जिस शख्स से गैर इरादी तौर पर गलती हो और दोबारा करने का भी इरादा ना हो, और गलती और गुनाह सरज़द हो जाने के बाद गलती का एहसास हो और इस पर नादिम होकर दरबारे इलाही में से माफ़ करने की इल्तिजा करें, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देते हैं, और इसकी नदामत और पशेमानी इस गुनाह की गंदगी को धो देती है। मसलन कोई खूबसूरत चीज़ सामने आ जाए और तबीयत इस पर गालिब आ जाए और इसको देखे और लज्जत हासिल करे, तो गोया ये माल के नशे की तरह है। फिर इसको इसका एहसास हो और इस पर शर्मिंदगी हो, ये गलती और गुनाह के आसार को धो डालेगी। ये मानी है इसे फरमाने इलाही का, इज़ा मस्सहुम ताइफ़ु मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़ैज़ा हुम मुबसिरून। जब उनको छू जाती है शैतान की तरफ से हल्की सी उकसाहट। याद रखिए, शैतान हमें बार बार गुनाहों पे माइल करना चाहता है ताकि हम फिर अल्लाह की नज़रों से गिर जाएं। तो कहते तज़क्करू, होश में आ जाते हैं, उनको पता लग जाता है, ओ ये शैतान था जो मुझे दुखी कर रहा था। फैज़ा मुबसिरून, फिर वो खूब देखने भालने लगते हैं, क्या पता चला ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है किसी पे कि उसको पता लग जाए कि शैतान है जो इस वक्त मुझे बहका रहा है। और याद रखिए, शैतान का तो मकसद ही क्या है कि आपको मुझे वरगलाए। उसका मकसद हयात, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? कि जिस जन्नत से वो महरूम कर दिया गया, वो खुद भी उससे निकल जाए और हमें दूसरों को भी, हम सबको भी निकलवा दे। इसलिए हमेशा इसके फंदों से अपने आप को बचाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि नफ्स कभी ये जो बात कहता है, कोई बात नहीं ना, अल्लाह माफ़ कर देगा, फिर और गुनाह करा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, लेकिन जिसे चाहता है इसे माफ़ करता है। ये नहीं है कि हर एक को माफ़ कर दे। तो मग़फ़रत फिर क्या है? खुलासा कर लीजिए, मग़फ़रत और तौबा, जिस शख्स से बग़ैर इरादे के गलती हो, यानी पहली चीज़ लिखिए, इरादा नहीं था गुनाह का। आज तो अल्लाह माफ़ करे हमारे इरादे, के हमारे तो प्लान छपते हैं, 6-6 महीने पहले से प्लान किए होते हैं कि इस शादी में हमने क्या क्या खराबियां रखनी है। टाइम लिए जाते हैं, उनके लिए एडवांस दिए जाते हैं, कई दफ़ा उसके लिए डेट्स चेंज की जाती हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं। तो फिर याद रखिए, ये गुनाह गुनाह नहीं जो बंदा जानबूझ के करे और सोचे बाद में तौबा कर लूंगा, नहीं, बिला इरादा, गैर इरादी तौर पर। दूसरी शर्त, दोबारा कभी ना करूँ। हम कहते हैं नहीं, अगली शादी में इससे भी बढ़ के करेंगे, अल्लाह में हिदायत दे। तीसरी बात, हो गई गलती या गुनाह, ऐसी हो गई, इरादा नहीं था, नियत भी नहीं थी, किसी के लिए हो गई, अनजाने में हो गई, तो फिर एहसास हो, शर्मिंदगी हो और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करेगा। इसकी नदामत और पशेमानी इस गुनाह की गंदगी को धो डालती है। और हदीस में आता है नदमुत तौबा, दो लफ्ज़ों की हदीस याद कर ले, अन नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा का दूसरा नाम है। यानी शर्मिंदगी के बगैर आप 100 दफ़ा भी पढ़ लेना अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कोई वजीफा ही कर रहे हैं आप, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका दिल नादिम और शर्मिंदा नहीं है। मसलन कोई खूबसूरत चीज़ सामने आ जाए और तबीयत इस पर गालिब आ जाए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, इससे भी पता चलता है कि बार बार नहीं करना, जान जान के नहीं करना। और गुनाह को बार बार करने वाला और इस पर इसरार करने वाला तो जानबूझकर करने वाला है, खुल्लम खुल्ला हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी करने वाला है, तो मुआफ़ी भी बकदरे इसरार होगी और गुनाह पर सजा होगी। जैसे इब्नुल हला का कौल है, वो कहते हैं कि एक मरतबा मेरे शेख, शेख कहते थे उस दौर में उस्ताद को, मेरे शेख ने मुझे एक ईसाई लड़के से बात करते हुए देख लिया, कहा ये क्या हो रहा है, इसकी सजा को तुम जरूर देखोगे, अगरचे देर से देखो, चुनाचे 40 साल के बाद मैं कुरान भूल गया। अब आप परेशान होंगे, अच्छा गैर मुस्लिमों से बात करना गुनाह? ईसाई लड़के से बात की और कुरान भूल गया, और ये हो गया वो हो गया, तो देखिए वो गुफ्तगू अच्छी नहीं होगी ना, वो दावत तो नहीं दे रहा होगा ना, वो उसकी कोई जायज़ काम में मदद तो नहीं कर रहा होगा। सिर्फ ये देखिए उस दौर के उस्तादों का क्राइटेरियन क्या था। आज कोई होके छोड़े, इतने जजमेंटल हैं लोग, इतनी नसीहतें करते हैं, हर बात नोट करते हैं, और उस्ताद की बात 40 साल बाद याद आ रही है कि जब कुरान भूल गया, कहा अच्छा ये वो मेरा गुनाह था जिस पे उस्ताद ने टोका था। अल्लाह अकबर कबीरा। यकीन कर लीजिए कि गुनाह करने के बाद बदन की सलामती से धोखा खाना सबसे बड़ी गलती है। इसको भी नोट करें। बात कहते हैं हमने गुनाह किया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है, वो फलां इतना नेक है क्यों हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फलां की बेटी को तलाक की हो गई, वो तो बड़े दीन का काम करते थे। तो देखिए ये बहुत बड़ी गलती है बंदे की कि मैं गुनाह करके भी ठीक ठाक हूँ, तो वो कमर में दर्द के, वो तो ठंड लग गई, और वो इधर क्या हुआ, वो तो पाँव फिसला। हम समझते ही नहीं है कि किस गुनाह पे ठंड लगी, किस वजह से पाँव फिसला, हम ज़ाहरी असबाब पे मर रहे होते हैं, लिहाजा इंसान भूल जाता है। इसलिए कि फौरन सजा नहीं होती, बल्कि सजा अपने वक्त पर आती है। सबसे बड़ी सजा तो ये है कि गुनाह का एहसास ही ना रहे। इसको लिखिए, याद रखिए कि जब अल्लाह ताला बंदे से नाराज होता है ना, तो उसकी रोटी पानी और उसकी ऑक्सीजन नहीं छीनता, बल्कि उससे गुनाहों का एहसास छीन लेता है, और उसको गलतियों पर अपना दिल ही नहीं मलामत कर रहा होता। चलिए चंद सेकंड सोचे, कोई गलती को गुनाह किया आज मैंने, मेरे से कोई गुनाह हुआ, मैंने कुछ किया, और क्या मैंने उसको गुनाह समझा, क्या मुझे उस वक्त एहसास था कि ये गुनाह है? सब था, लेकिन हम ढीले और हम भोले बने रहते हैं। हम कहते हैं जैसे दूसरे देख के हमें इंजॉय कर रहे हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते भी देख लगेंगे, हमें कहेंगे ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन याद रखिए कि दिलों का मुरझा जाना और नफ्स का बुरी खसलत का आदि होना सबसे बड़ी अकूबत और सजा है। आप देखिए जिस्म का जो हिस्सा सुन्न हो जाता है ना, उस पर इंजेक्शन लगाएं दर्द नहीं होता, इसी तरह जब दिल बंजर हो जाते हैं ना, तो इंसान को बुरे से बुरे माहौल में भी डर नहीं लगता। कभी आपने सोचा जब हम किसी नाफरमानी की महफिल में होते हैं, सिर्फ छत गिर जाए शोर से, धमक से, अल्लाह की पकड़ से, तो हम बचे, कुछ जल्जला आ जाए। साहबा कहते हैं हम गुनाह से ऐसे डरते थे जैसे पहाड़ हम पे गिर जाएगा, और मुनाफिक का हाल क्या कि जैसे नाक पे बैठी मक्खी उसको उड़ा दिया। अगरचे बदन सही सलामत रहे और मकासद भी पूरे होते रहे, यानी बज़ाहर आपको कोई सज़ा ना मिले, लेकिन अगर आप गुनाहों पर बेहिस हो गए ना, तो ये अल्लाह की सज़ा है। बाज़ अहले इबरत का कहना है कि मैंने जायज़ उमूर में अपनी नज़र को खुला छोड़ दिया, फिर इसकी सज़ा का मुंतज़िर रहा, चुनाचे मुझे बिला वजह और इरादा, यानी बग़ैर किसी वजह और बग़ैर इरादे के तवील सफ़र पर जाना पड़ा, जिसमें ज़बरदस्त मुशक्क़त से दो चार हुआ। फिर इसके बाद मेरे वो करीबी लोग मुझसे रुख्सत हो गए, जिनका वजूद मेरे लिए बायस इज़्ज़त और इफ्तिखार था, और मेरी ऐसी ऐसी अशिया ज़ाया हुई जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। फिर मैंने तौबा करके इसकी तलाफ़ी की, तो मेरी हालत दुरुस्त हुई। फिर ख्वाहिशात नफ्स ने सर उठाया, और एक मर्द बांकों को गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया, मजबूर किया, जिससे मेरे दिल की हयात और इसका नूर और इसकी रिक्कत और नरमी सब ख़त्म हो गई, और पहले से ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर तौबा की तरफ रुजू किया, और इस्लाह अहवाल की दुरुस्तगी की कोशिश की, और इसके असबाब पर गौर किया, और इनको दूर किया, तो हालात फिर से सही हो गए। ज़रा सोचिए क्या इतनी गहरी नज़र हमारी है, यानी ऐसे ही देख लिया ऐसी चीज़ को जिसको नहीं देखना था, तो क्या हुआ, प्यारे चले गए दूर, करीबी लोग दूर हो गए जिनके साथ बहुत खुश था, तवील सफ़र पड़ गया। उस दौर में तो आप देखिए सफ़र, किसी को सज़ा देनी हो ना, तो कहते थे अल्लाह तुझे किसी सफ़र में डाले। सफ़र क्या था, निरी मुशक्क़त, कभी पैदल कभी घोड़ों में, ना खाना ना पानी ना कोई रास्ते की सहूलियात, आज के सफ़र नहीं थे। और आप कहते हैं जब तौबा की तो वापस आ गया, फिर दोबारा नफ्स की ख्वाहिशें हुई तो फिर चल पड़ा। ये दुआ मांगी है, ये है मुबसिरून, अल्लाह हमें अपने ऊपर आने वाली हर मुश्किल की वजह सुझा दे। ये क्यों आई है, किसका दिल तोड़ा, किसकी नाफरमानी की, किसको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया, कब फजर कज़ा की, कब नमाजें डेले हुई, कब क्या कुछ, कहाँ मैंने अपने आप को खोल दिया, नहीं खोलना था। याद रखिए गुनाह वो करे जिसमें सज़ा सहने की ताकत है। मैं अक्सर कभी किसी को सरीहन ऐसे गुनाह में देखूं कि जिसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ है ताकत इसको भुगतने की, फिर जब कमर में दर्द, जब सर में दर्द, जब बच्चे ने आगे से बदतमीजी करनी, और जब शौहर ने बदगुमान होना है, और जब बहन भाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, और जब दुनिया में कोई ऐसी आफत आएगी जिसकी तुम्हें वजह नहीं समझ आएगी, तो ये वक्त याद करना। तो गुना बड़ी जरूरत है भाई, बड़ा हौसला है। क्या फिर इसके बाद योगा कर लेंगे? देखिए ना, आप बहुत केयरलेसली खाएं, आप कहते जो खा लो खुद देखेंगे बाद में। आइसक्रीम भी खा ली, केक भी खा लिया, फ्राई चीज़ें भी खा ली, फिर क्या कहते हैं, मन चले, और जो होना होगा देखेंगे। अब जो होना होगा देखेंगे नहीं, वो हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ, हो सकता है शुगर हो जाए, अब क्या करेंगे? ये तो सबको होनी है, ये तो मौरूसी है ना, मेरे अब्बा को भी थी, अम्मी को भी थी, बहन भाइयों को भी है। चलो जी, हम साफ सुथरे नहीं। जब एक बंदा अपने हालात पे नजर रखे, उसको समझ आने लग जाता है कि ये क्या हुआ। फिर आप देखिए, ये कहते हैं जब मैंने तौबा की तो दुरुस्त हुआ, और जब ख्वाहिशों पे फिर मैंने ज़रा सा गलत चीज़ों पे अपने आप को किया, तो दिल की ज़िंदगी चली गई, दिल का नूर ही चला गया, दिल की नरमी ख़त्म हो गई। तीन चीज़ें हैं देखिए, दिल की ज़िंदगी ख़त्म क्या है, मुर्दा दिल, दिल ही नहीं खुश, दिल मसोसा हुआ, खुशी का नाम ही नहीं है ज़िंदगी में, नूर चला गया, अंधेरे हैं, दिल से नरमी चली गई, और पहले से ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर तौबा की तरफ रुजू किया तो हाल दुरुस्त हो गया, असबाब पे गौर किया, अल्लाह ने हालात फिर ठीक कर दिए। कहते हैं मैं इन लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ जो ख्वाहिशात नफ्स के समंदर के साहिल पर हैं, कि मेरे भाइयों, इस समंदर की लहरों से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करो, इसके सुकून से धोखा मत खाओ, इसके अंदर हरगिज़ मत घुसो, साहिल ही में रहो, तकवा के कले से हरगिज़ बाहर ना निकलो। सज़ा एक मरतबा होती है, और ये भी जहन नशीन रखो कि तकवा इख्तियार करने में अगराज, अगराज कहते हैं गरज, यानी वॉन्ट्स लिख लीजिए, आपकी से क्या गरज है, व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम दिस, ये मुराद है। और मर्दियात नफ्स, यानी जिस पे नफ्स खुश हो, और मर्दियात नफ्स का मुकाबला करने में तकलीफ होती है, मगर जरबुल मिसल है, क्या बुखार के बाद तंदरुस्ती में इजाफा होता है, तकलीफ के बाद आसानी जरूर आती है। अलहमियतु तादिबु सहा, हमारे यहाँ भी ये कहते हैं ना, बीमारी के बाद सेहत अच्छी, क्योंकि वो विटामिन खा लेगा, आराम करेगा, यखनी पिएगा, लोग खिदमत करेंगे, भारी काम नहीं होगा, तो बाद में देखिए ज़्यादा अच्छी सेहत होती है। इसी तरह लिख लें, फाइन नमा लुसरी युसरा, तकलीफ के बाद ज़रूर आसानी है, बल्कि अल्लाह तो कहता है माँ साथ है, विद आफ्टर नहीं है, साथ साथ तकलीफों के आसानी आती जाती हैं, और आसानियों के साथ तकलीफें लगी हुई हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रजा के लिए कुत्तों के साथ गंदगी के ढेर में सोना, बड़ी बात है ये, सुनिएगा। अल्लाह आपसे राजी है ना, तो जानवरों के साथ आप गंदगी के ढेर पे सो रहे हैं। ख्वाहिशात नफ्स के खुशनुमा महल्लों में सोने से कई गुना बेहतर है। क्या ये बात आज के इंसान और आज के मुसलमान को समझ आती है? आज ये ख्वाहिशें हैं जिन्होंने हमें अल्लाह की नज़रों में जलील व ख्वार किया हुआ है, और हम कहते हैं बड़े खुश, खुश कोई नहीं है, रात जाती मुसीबतें लगी हुई हैं जान को, और एक खुशी का वक्त अल्लाह क्या दे दे, हम कहते हैं जब तक तू नहीं नाराज़ होगा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कसर निकालते हैं उस वक्त। तो बंदा ख्वाहिशों को पूरा करके मोहल्लात में सोए, इससे अच्छा क्या है, अल्लाह की रजा के साथ दुख सुख में रह ले। अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया की तमाम अगराज़ो मकासद हासिल कर भी लो, लिख लें, नहीं होती। आप सोचते ना कि अल्लाह को नाराज़ किया है तो सब कुछ मिल जाएगा, चलो नहीं मिलता। आप कहते हैं अल्लाह को राज़ी करेंगे तो ये होगा, नहीं मिलता उतना ही है जितना नसीब में है, ये सब कुछ भी हासिल कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि ऐसी सलामती सलामती नहीं बल्कि हलाकत है, और आफियत आफियत नहीं बल्कि मरज़ है। असल एतबार इंजाम का है, अक्लमंद इंसान तो इंजाम को देखता है। अल्लाह तुम पर रहम करे, आजमाइश इब्तला की सख्त गर्मी को बर्दाश्त करो, ये बेसुबात है, यानी बिल्कुल पायदार नहीं है, नॉट परमानेंट, जल्द ख़त्म होने वाली है। असल तौफीक तो अल्लाह ही की तरफ से है, और वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। कितने देखिए अहम टॉपिक्स हैं, और कितना इंसान इस पे गौर करके अपने दिल को पका पाता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मेरे गुना है, सीधी सी बात है। और याद रखिए, हमारे यहाँ बचपन से एक जुमला हम सुनते आ रहे हैं, गुनाह बेलज़त, कई गुना बेलज़त होते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए करते हैं। मैं तो नहीं कर सकती, क्यों, मुझे रब को नाराज़ नहीं करना, और अब तो मैं तुम सबके साथ बैठ के गुनाह करूँगी, लेकिन जब मैंने इसकी सज़ा भुगतनी है तो मैंने अकेले होना है, फिर हो सकता है तुम में से कोई मेरा सर भी ना दबाए। तो हमेशा अपने आप को गुनाहों से दूर समझें, यकीन कीजिए ये चीज़ें आज तो लगता ही नहीं है कि उम्मत को ये सबक पढ़ा कर गए थे अल्लाह के नबी। बार बार कुरान में और ख़ास रुपये मक्की सूरतों में आता है कि वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो तकलीफ़ आती है तुम्हारे अपने हाथों का किया दर है। डॉक्टर भी ये कहते हैं जी आपका अपना किया दर है, जी आपने ये वेट खुद गेन किया है, जी आपने अपनी शुगर को खुद ही कंट्रोल से निकाल दिया,